धवला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 4 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूण सिद्धे विबुद्धशयने अज्जत्थ बहिथ बंधन मुक्के भत्तिये अहम् न म्यू पुनो पुनो बंधनम् वचम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये जो चौथी पुस्तक है वो पांचवा खंड है, वर्गना खंड, और उसमें हम बंधन अनुयोग द्वार देख रहे हैं। चौदहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 33 पर आ गए हैं। देखो, हमारा ये द्रव्य निक्षेप का प्रकरण चल रहा है बंध के बारे में। उसमें हमने आगम द्रव्य बंध देखा है और फिर नो आगम द्रव्य बंध देखा। अब जो नो आगम द्रव्य बंध बताया है, पेज नंबर 28 निकालिए। 26 नंबर के सूत्र में ये बताया गया था, जो नो आगम द्रव्य बंध है वह दो प्रकार का है। एक है प्रयोग बंध और एक है विसरसा बंध। तो कहते विसरसा बंध वो भी दो प्रकार का है, सादी विसरसा बंध और अनादि विसरसा बंध। जो अनादि विसरसा बंध होता है वो धर्मास्थि अधर्मास्थि और आकाशास्थिक के विषय में होता है, यानी उनके प्रदेशों का जो स्वाभाविक बंध है उसको यहाँ अनादि विसरसा बंध कहा था। अभी वो तीन प्रकार का बताए ना कि पूरा धर्मास्तिक देश प्रदेश, यानी धर्मास्तिक धर्मास्तिक देश और धर्मास्तिक प्रदेश, ऐसे तीनों ही बारे में बताया था। उसके बाद आना पेज नंबर 30 पर, जो सादी विसरसा बंध है वो विसदृश स्निग्धता और विसदृश रुक्षता बंध है, यानी स्निग्धता और रुक्षता ये विसदृश गुण है, पर्याय विसदृश है और वो बंध का कारण है। बंध के कारण को यहाँ बंध कहने में आ रहा है। तो कारण में कार्य का उपचार करके, यानी यहाँ विसदृशता किस अपेक्षा लेना है, स्निग्धता और रुक्षता ये परस्पर विरुद्ध है, विसदृश भाव है, उसी को यहाँ विसदृश कहा, यानी विसदृश का बंध होता है, ये उनका कहना यहाँ पर। फिर वक्ते समान स्निग्धता और समान रुक्षता भेद है, यानी समान स्निग्धता और समान रुक्षता भेद यानी असंयोग का कारण है। समान स्निग्धता यानी स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रुक्ष का रुक्ष के साथ, उसको समान स्निग्धता रुक्षता कहा। यानी यहाँ अविभाग प्रतिच्छेदों की अभी बात नहीं उठाई है, केवल यहाँ स्निग्धता और रुक्षता को ही बंध का कारण लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी उसी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 34 नंबर के गाथा सूत्र में बताया था, स्निग्ध पुद्गल स्निग्ध पुद्गलों के साथ नहीं बनते, रुक्ष पुद्गल रुक्ष पुद्गलों के साथ नहीं बनते, किंतु सदृश और विसदृश ऐसे स्निग्ध रुक्ष पुद्गल परस्पर बनते हैं। अब इसमें और भी एक बात बताई उन्होंने कि स्निग्ध के साथ स्निग्ध सर्वथा नहीं बनते, तो वो कहेंगे कि रुवा रुवीय पुग्गला बज्जन्ति, यानी वो जो पुद्गल के गुण है अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अब लेना यहाँ पर, तो रूपी किसको कहेंगे? तो अविभाग प्रतिच्छेदों की समानता है उसको रूपी कहेंगे। ये जो देखो देखो पेज नंबर 31 लास्ट लाइन निकालो, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो गाथा के उत्तरार्ध द्वारा प्रथम सूत्र का अर्थ कहते हैं निद्ध लुखाय बज्जंती। ऊपर क्या कहा था? निद्ध निद्धा न बज्जंती, अनि लुख लुखा या पोगला या वो भी नहीं बनते, यानी स्निग्ध के साथ सिंह नहीं बनते, वृक्ष के साथ वृक्ष नहीं बनते। अब दूसरे लाइन में क्या बता है? निद्ध लुखा या बज्जंती रुवा रुवी या पोगला, यानी अर्थात स्निग्ध पुद्गल और वृक्ष पुद्गल परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं क्योंकि इनमें विसदृशता, ये जो विसदृशता है वो स्निग्धता और वृक्षता, ये विसदृश भाव है, ये उसकी विसदृशता है। अभी जो गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा जो है वो तीसरी लाइन में, क्या गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान स्निग्ध वृक्ष पुद्गलों का बंध होता है या अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा विसदृश स्निग्ध वृक्ष पुद्गलों का बंध होता है, ऐसा प्रश्न है। पहले उन्होंने ये नक्की कर दिया स्निग्ध का वृक्ष के साथ बंध होता है, स्निग्ध के सिद्ध के साथ नहीं होता, वृक्ष का वृक्ष के साथ नहीं होता। अब सवाल ये है अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा ये चार गुण वाले वृक्ष के साथ बंधेगे स्निग्ध के, यहाँ स्वीकार किया है।
हाँ, यहाँ पे
यहाँ क्या है उसको पहले हमको सीखना है। तो देखे है क्या उनका बंध होता है, ऐसा प्रश्न करने पर रुवा रुवी पोगला बज्जंती कहा है, यानी जो स्निग्ध वृक्ष गुणों से युक्त पुद्गल गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा, देखो स्निग्ध और वृक्ष को गुण कहा और वो गुणों के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी अब बात करेंगे। अभी तक अविभाग प्रतिच्छेदों की बात नहीं की थी, केवल स्निग्ध का वृक्ष का बंध होता है बस इतनी बात की थी। अब उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा लगा रहे तो कहते हैं कि स्निग्ध वृक्ष गुणों से युक्त पुद्गल गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान होते हैं, वे रूपी कहलाते हैं। यानी स्निग्ध के चार गुण मान लेते हैं और वृक्ष के चार गुण, तो दोनों के अविभाग प्रतिच्छेद समान हुए तो कहते उनका उनको रूपी कहलाते हैं, वे भी बनते हैं, भी बनते बताया। और विसदृश पुद्गल अरूपी कहलाते, विसदृश ने अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा विसदृशता है, एक गुण डिफरेंस है, दो गुण डिफरेंस है, चार गुण डिफरेंस है, तो कहते हैं कि वे भी बंध को प्राप्त होते। अभी हमारी जो पहले जो हमने सीखा है वो जरा बाजू में रखो, अभी यहाँ क्या कहना चाहिए वो पूरा ही समझ लो। स्निग्ध वृक्ष पुद्गल गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या की अपेक्षा चाहे समान हो चाहे असमान हो उनका परस्पर बंध होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। हाँ, वो कंडीशन बताएंगे कि एक गुण वाला नहीं बनता, जघन्य का बंध नहीं होता, वो कहेंगे। अब 35 नंबर का सूत्र फिर पढ़ते अभी हम, वो कल ये सब अपना हुआ था, हम 33 पेज पर आए थे, हम केवल हिंदी में पढ़ेंगे। द्विमात्रा स्निग्धता और द्विमात्रा रुक्षता परस्पर बंध है। अब गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सदृश और विसदृश ऐसे स्निग्ध पुद्गलों का स्निग्ध पुद्गलों के साथ और वृक्ष पुद्गलों का वृक्ष पुद्गलों के साथ पूर्वोक्त अर्थ के अनुसार बंध का अभाव प्राप्त होने पर उनका भी बंध होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र का दूसरा अर्थ कहते हैं। यथा मात्रा का अर्थ अविभाग प्रतिच्छेद है। हाँ, यानी अगर उन्होंने निषेध किया कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध नहीं होता, वृक्ष का वृक्ष के साथ बंध नहीं होता, तो इसे सर्वथा अभाव नहीं है। हाँ, ऐसा बंध संभव है तो उसमें क्या कंडीशन, बंध होता है पर उसके लिए कंडीशन क्या है, दो का डिफरेंस होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो उसका कितना प्रमाण है, यानी उसको अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहेंगे? तो कहते गुण की जघन्य वृद्धि मात्र उसका प्रमाण है। जो एक अंश है जिसमें इतनी वृद्धि हो सकती है, एक अंश की वृद्धि, उस एक अंश को यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद कहा है। ये तो कहीं पर भी अविभाग प्रतिच्छेद नापने के लिए जघन्य वृद्धि के लिए, स्पेशली योग में हमने देखा था जघन्य वृद्धि को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जिस स्निग्धता में दो मात्रा अधिक या हीन होती है, दो मात्रा का अर्थ होते हम जिसको कहें अविभाग प्रतिच्छेद, वह द्विमात्रा स्निग्धता कहलाती है। वह बंध है अर्थात बंध का कारण है। स्निग्ध पुद्गल दो अविभाग प्रतिच्छेद अधिक स्निग्ध पुद्गलों के साथ या दो अविभाग प्रतिच्छेद कम स्निग्ध पुद्गलों के साथ बंधते हैं। इनका तीन आदि अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पुद्गलों के साथ और तीन आदि अविभाग प्रतिच्छेद कम पुद्गलों के साथ बंधन नहीं होता लेना चाहिए। इसी प्रकार रुक्ष पुद्गलों का भी रुक्ष पुद्गलों के साथ बंध का कथन करना चाहिए। अब इस अर्थ का निश्चय उत्पन्न करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब ये भी हमने पढ़ा था, फिर हिंदी में पढ़ते 36 नंबर। स्निग्ध पुद्गल का दो गुण अधिक स्निग्ध पुद्गल के साथ और रुक्ष पुद्गल का दो गुण अधिक रुक्ष पुद्गल के साथ बंध होता है, तथा स्निग्ध पुद्गल का रुक्ष पुद्गल के साथ जघन्य गुण के सिवा, यानी वो मिनिमम जो है उसको छोड़कर विषम अथवा सम गुण के रहने पर बंध होता है, यानी उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है स्निग्ध और रुक्ष में कि दो का डिफरेंस होना चाहिए। केवल जघन्य का जघन्य के साथ बंधन नहीं है, कितने भी डिफरेंस सम विषम किसी के भी साथ उसका बंध हो सकता है, ये यहाँ लिखा है। स्निग्ध पुद्गल का अन्य स्निग्ध पुद्गल के साथ यदि बंध होता है तो दो गुण अधिक स्निग्ध पुद्गल के साथ ही होता है। रुक्ष पुद्गल का अन्य रुक्ष पुद्गल के साथ यदि बंध होता है तो दो गुण अधिक रुक्ष पुद्गल के साथ ही होता है। स्निग्ध सब पुद्गल का रुक्ष सब पुद्गल के साथ जो बंध होता है वह किस अवस्था में होता है ऐसा पूछने पर विषमे समेवा यह वचन कहा गया है। गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा रुक्ष पुद्गल के साथ सदृश स्निग्ध पुद्गल सम कहलाता है। समय ने अविभाग प्रतिच्छेद की समानता और असदृश स्निग्ध पुद्गल विषम कहलाता है, यानी वो मान ले हमने अभी चार का ना, चार गुण है इसमें और उसमें भी है, तो चार को छोड़कर बाकी सब विषम कहलाएंगे। यहाँ स्निग्ध रुक्ष गुण के द्वारा पुद्गलों का बंध होता है, इस नियम के अनुसार सब पुद्गलों का बंध प्राप्त होने पर क्या सभी बनते हैं तो कौन नहीं बनते हैं बताने के लिए जहन्न वज्जे यह कहा गया है, यानी जघन्य को छोड़ बाकी सभी स्निग्ध सभी रुक्षों के साथ बंधते हैं। जघन्य गुण वाले स्निग्ध रुक्ष पुद्गलों का न तो स्वस्थान की अपेक्षा बंध होता है न परस्थान की अपेक्षा, यानी जो दो का डिफरेंस हमने देखा था स्निग्ध का दो के डिफरेंस के साथ बनता है, तो एक गुण वाला क्या तीन गुण वाले के साथ बंधेगा तो कहते नहीं बंधेगा, न स्वस्थान में बंधेगा न एक गुण वाला स्निग्ध एक गुण वाले रुक्ष के साथ बंधेगा, ये कहना चाहते हैं। यानी बंध दो से लेकर आगे के गुण वाले उनके बंध हो गए। इस तरह इस प्रकार के गुण विशिष्ट पुद्गलों का बंध होता है और अन्यादृश पुद्गलों का भेद होता है, यानी जिसमें ऐसे नहीं उनके भेद होता है, जो स्कंध में से वो छूट जाते हैं, क्योंकि बंध में विरुद्ध गुण से युक्त होना आवश्यक है। बंध किसका होता है तो विरुद्ध गुणों का बंध होता है, ये कहना चाहते हैं। यहाँ तक तो अपना कल विषय हुआ था, अब इसी का विशेषार्थ यहाँ देखते हैं। पुद्गल परमाणुओं के बंध के विषय में दो परंपराएं उपलब्ध होती है। प्रथम परंपरा का निर्देश यहाँ किया ही है, इसके अनुसार निम्न व्यवस्था फलित होती है, जो हमने जो दूसरी परंपरा सीखी है उसकी बाद में बताएंगे। ये तो एक परंपरा यहाँ बता रहे, एक जो उपदेश यहाँ बता रहे। हाँ ये नया है। हाँ ये परंपरा नई है। हाँ देखो, ये जो टेबल बनाया है 1, 2, 3, 4, 5 है, वहाँ गुणांश बताए यानी अविभाग प्रतिच्छेद, यानी जघन्य बताए है, और फिर एक से लेकर अधिक अधिक वगैरह वगैरह। सदृश बंध में क्या लेना, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ वो सदृश बंध है, और वृक्ष का वृक्ष के साथ वो भी सदृश बंध कहलाएगा, और विसदृश बंध किसको कहते हैं, स्निग्ध का वृक्ष के साथ वो विसदृश बंध है। अब कहाँ क्या होता है, तो जघन्य का जघन्य के साथ ना सदृश बंध है ना विसदृश बंध है, इसे नहीं नहीं लिखा। अब जघन्य का एकादि अधिक यानी जघन्य का, जघन्य को अगर हम एक कहेंगे तो क्या उसका एक का दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ बंध होता है, तो कहते हैं कहीं पर भी नहीं होता, भले वो अपोजिट पार्टी कितने से भी अधिक हो, परंतु एक पार्टी एक वाली है तो उसका बंधन नहीं होगा, न स्वस्थान में न परस्थान में। अब कहते जघन्य को छोड़कर अन्य का बंध कैसे होता है, तो जघन्येतर का यानी जघन्य छोड़कर अन्य का, सम जघन्येतर यानी जो अन्यों का सम के साथ बंध होता है क्या, सम यानी समान अविभाग प्रतिच्छेद, जो कहते हैं स्निग्ध का स्निग्ध के समान अविभाग प्रतिच्छेद का, उसका बंध नहीं होता। परंतु समानता है किसमें, स्निग्ध के अविभाग प्रतिच्छेद मान लेते हैं ना 10 है और वृक्ष के भी 10 है तो उनका बंध होगा, समान अविभाग प्रतिच्छेदों वालों का बंध होगा। अब चौथा पॉइंट पूछते हैं, जघन्य को छोड़कर है और एकाधिक जघन्येतर है, यानी अभी हम पहले सदृश में देखते हैं जघन्येतर, यानी अभी हमने 10 का उदाहरण लिया था, तो 10 का एक से अधिक के साथ बंध होगा क्या, तो सदृश में तो नहीं होगा। विसदृश में यानी स्निग्धांश 10 है और वृक्षता 11 है तो बंध होगा। अब कहते जघन्येतर पर द्व्यधिक जघन्येतर यानी दो के डिफरेंस से, जघन्य को छोड़कर अभी हमने 10 का उदाहरण लिया, तो स्निग्धांश 10 है और उसका स्निग्धांश 12 के साथ बंध है कहा, और स्निग्धांश 10 का वृक्षांश 12 के साथ भी बंध है, उसके लिए कोई कंडीशन है ना, केवल वो जघन्य का बंध नहीं है,
बाकी सब
बाकी स्निग्धांश वृक्षांश में कितना भी डिफरेंस हो उसका तो बंध होगा ही होगा। अब ये जघन्येतर जघन्य को छोड़कर जो है, और त्र्यादि अधिक जघन्येतर यानी तीन का डिफरेंस होगा, स्निग्धांश का स्निग्धांश में तीन का डिफरेंस होता था, 10 वाला 12 से तो बनता था, पर स्निग्धांश 10 वाला स्निग्धांश 13, 14, स्निग्धांश 15 के साथ कहीं पर भी उसका बंध नहीं होगा, वैसे वृक्ष का वृक्ष के साथ लेना। परंतु स्निग्ध वृक्ष में कितने भी के डिफरेंस क्यों ना हो, तीन से लेकर आधे यानी कितना का भी डिफरेंस क्यों ना हो, उनका बंध है। अब आते हैं 34 पेज पर। अब ये दूसरी परंपरा यहाँ बता रहे जो तत्वार सूत्र की है, इसके अनुसार निम्न व्यवस्था फलित होती है, ये दूसरी परंपरा हम इससे परिचित है। तो कहते जघन्य का जघन्य के साथ कहीं पर भी बंध नहीं, ना सदृश का न विसदृश का। सदृश का अर्थ वही करना है, स्निग्ध स्निग्ध वृक्ष वृक्ष वो सदृश है, विसदृश स्निग्ध वृक्ष। अब देखो जघन्य का एक के डिफरेंस से अगर होगा न सदृश बंध है न विसदृश बंध है। अब जघन्य को छोड़कर अन्य का तो बंध होगा, तो सम जघन्येतर यानी फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी 10 वाला जो देखा था, तो 10 का स्निग्धांश 10 के स्निग्धांश के साथ बंधेगा तो कहते नहीं बंधेगा सदृश में, और 10 का स्निग्धांश वृक्ष के 10 के साथ बंधेगा तो कहते वो भी नहीं बंधेगा। चौथा पॉइंट, जघन्येतर लिया हमने, यानी हमने 10 लिया और एकाधिक जघन्येतर यानी 11, यानी 10 का स्निग्धांश 11 के स्निग्धांश के साथ बंधेगा तो कहते नहीं, 10 स्निग्धांश 11 वृक्षांश के साथ बंधेगा तो कहते नहीं, तो क्या बंधेगा, तो जघन्य छोड़कर अन्य जो कोई भी अविभाग प्रतिच्छेद हो, अभी 10 को हो या 12 को, जो कुछ लेगी आप, तो वो दो के डिफरेंस से जो होगा उसके साथ बंद होगा। यानी 10 वाला स्निग्धांश है वो 10 वाले स्निग्धांश के साथ भी बंधेगा, और विसदृश ने 10 वाला स्निग्धांश 12 वाले रुक्षांश के साथ भी बंधेगा। परंतु यदि जघन्य को छोड़ अन्य कोई भी जो है और उसमें तीन से अधिक डिफरेंस होगा, तीन या तीन से अधिक, तो ना सदृश में बंध होगा ना विसदृश में बंध। ये तो हमने, ये परिपाटी हमने पहले से ही पढ़ी हुई है। यद्यपि सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ वार्तिक में दोनों ही तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं, निद्धस निद्धेन इत्यादि गाथा उद्धृत की गई है, पर इस गाथा के उत्तरार्ध के अर्थ में मतभेद है, और यह मतभेद तत्वार्थ वार्तिक से स्पष्ट हो जाता है। गाथा के उत्तरार्ध का शब्दार्थ यह है कि स्निग्ध गुण वाले परमाणु का रुक्ष गुण वाले परमाणु के साथ समय या विषम गुण होने पर बंध होता है, मात्र जघन्य गुण वाले का किसी भी अवस्था में बंध नहीं होता। किंतु तत्वार्थ वार्तिक में समय विषमय वा इस पद में सम का अर्थ तुल्य जातीय और विषम का अर्थ अतुल्य जातीय किया है। तत्वार्थ वार्तिक कार के समक्ष वर्गणाखंड के ये सूत्र उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने यह अर्थ किया है। तत्वार्थ सूत्र में बंधे अधिकौ पारिणामकौ च यह सूत्र आया है, और इस सूत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्वार्थ सूत्र के मत से तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय पुद्गल परमाणुओं का बंध दो अधिक। आवाज आ रही है क्या? हाँ, तत्वार सूत्र के मत से भूल गया। हेलो हेलो, तत्वार सूत्र के मत से तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय पुद्गल परमाणुओं का बंध दो अधिक गुण के होने पर ही होता है। यही कारण है कि तत्वार्थ वार्तिक कार ने उक्त गाथांश का उक्त प्रकार से अर्थ किया है। समझ में आई ना बात? हमने एक परंपरा को बताया है अभी तक, उसी को ये तो प्रचलित है हमारे यहाँ पर, और वर्गणाखंड में इस तरह से उसका मूल अर्थ इस तरह से आया है। अब आगे बढ़ते 37। अभी सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए ना? अभी 37 ऊपर पढ़ते। प्रश्न ये था कि हाउ इज इट पॉसिबल हमने ऐसा स्वीकार है, तो हमें ये तो दूसरे, क्योंकि देखो हमें तो ये परंपरा से कौन से उपदेश है, मूल में क्या अर्थ है, उसको यहाँ स्वयं वीरसेन स्वामी बता रहे हैं, और विशेषार्थ में तो उन्होंने दोनों ही स्पष्ट कर दिया है। ये विशेषार्थ तो बाद में लिखा गया है, और तत्वार सूत्र के अनुसार उसका क्या अर्थ है, वो परंपरा क्या है, वो भी उन्होंने बता दी। हाँ, नहीं नहीं, गाथाएं दोनों ने उद्धृत की है, पर उसके उत्तरार्थ के अर्थ में मतभेद है। यानी उनके उत्तरार्ध का अर्थ उन्होंने दूसरी पद्धति से किया है, और उसका कारण वो तत्वार सूत्र में उसका अलग से उसका अर्थ, ये फर्क है कि केवल दो के रिफरेंस के ही बंद है। हाँ, और वहाँ पर दो का भी डिफरेंस हो, कितने का भी डिफरेंस हो, स्निग्ध और रुक्ष तो बनते ही बनते हैं। देखो देखो क्यों नहीं डिफरेंस, ना 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 देखो, अरे 3, 4, 5, 6 सब जगह है लिया है,
और इसमें एक ही जगह है,
और यहाँ एक ही जगह है। पहले तो जघन्य का किसी के साथ बंधन है तो दोनों जगह स्वीकार।
हाँ, वो तो बराबर है।
अभी तीसरा पॉइंट क्या है, जघन्येतर और सम जघन्येतर, यानी समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले, परंतु समान अविभाग प्रतिच्छेद होने पर भी स्निग्ध रुक्ष का बंध होता है, पर स्निग्ध स्निग्ध का नहीं होता है, तो वहां तो ये दोनों जगह इसको स्वीकार है, परंतु इनको ये स्वीकार नहीं है। जो अभी हमने सब चर्चा की थी, इसलिए आज दोबारा लिया पहले से।
हमने अभी तक इसको स्वीकार किया था ना कि दो का चार के साथ हो जाएगा, तो स्कंद का चार रूप या दो रूप,
वो यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। वो किस रूप होता है उसकी चर्चा नहीं है, किसका किसके साथ बंद होता है, बस इतनी बात। अच्छा, ओहो, अच्छा अभी आप इसी ठीक करो। एक नंबर में मैं सदृश देखती है, ऊपर से चार नहीं 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 है, दूसरा चार, दूसरा चार, चार बार नहीं है सदृश में, पांचवे में है लिखा है, छठे में नहीं है लिखा है। मैं ऊपर से नीचे में एक कॉलम पूरा बता रही हूँ, यानी चार बार नहीं, फिर पांचवे में है और लास्ट में नहीं, बराबर। अभी विसदृश बंद में पहले चार नहीं 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 लिखा है, पांचवे में है लिखा है और छठे में नहीं लिखा है। हाँ, यानी जो सदृश का और विसदृश का सेम है, उन्होंने पूरे टेबल सेम लिखा।
अच्छा, उन्होंने आगे का टेबल ही रिपीट हो गया
उनके टेबल ही रिपीट कर दिया उन्होंने। इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, नई एडिशन में नई मिस्टेक कर दी, ये तीसरी परंपरा चालू हो जाएगी। हाँ नहीं, अच्छा है आपने नोट कर दिया। ये वहाँ क्या लेना है, जैसा सदृश का कॉलम है वैसा विसदृश का कॉलम। यानी वहाँ गलत छपा है, ऐसा वो ऐसा अभ्यास तो किसी का नहीं ना, जूना पुराना और नए के साथ। जो नई पुस्तक पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे ना अभी। हाँ, वही तो मैं क्या कह रही हूँ, अभी जो पुस्तक पढ़ेंगे धवला, नई पुस्तक डायरेक्ट, तो वो तो भूल भरी सभी। अभी हमने बीच में देखे ना 11, 12, 10 में तो कितनी भूले थी, पेज पेज पर भूले थी। यानी वो चेकिंग जो ऐसा होता है ना, कंपैरिजन, पहले का पढ़कर एक एक शब्द के साथ मिलान, वैसा तो हुआ ही नहीं है। पहले उन्होंने भेजी थी पुस्तकें, पहले हमने 9 तो हमने सब लिख के भेजे थे सारे करेक्शंस, बाद में 9 के बाद उन्होंने भेजना चाहा था
करेक्शन,
उन्होंने तो नई पुस्तकें भेजी थी हमको करेक्शन के लिए। हमने बोले वो नहीं, एक दो पुस्तकें देखी मैंने, मैंने बोले नई पुस्तक में और बहुत नई भूले है, हमें पुरानी पुस्तकें भेजी है उसमें हम करेक्शन करके आपको भेज देंगे। तो बाद में वैसे हमने भेजी थी, क्योंकि वो नए कौन फिर पढ़ते रहे, अभी देखो ना कितनी मिस्टेक्स है उसके अंदर।
नहीं, पुराने करेक्शन हो गए अभी,
वो क्योंकि कम मिस्टेक इसलिए है क्योंकि हमने सब उनको भेजे है करेक्ट।
वो, हाँ, वो करेक्ट हो के आ गए, पर नहीं भूले,
नहीं बहुत है भूले, इसलिए उसको तो हमने टच ही नहीं किया है। और सूत्रों के अर्थ अलग से किया था, ये तो गुणहानि स्थानांतर वगैरह के इतना विचित्र अर्थ किया है उसके अंदर, तो मैंने बोला ये अपने से नहीं होगा, फिर नहीं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगे। चलो आगे है, आ है।
तो अभी नई पुस्तक की अपेक्षा तो अभी प्ररूपना ही गलत चलेगी ना, अभी ये जिसके पास पुरानी नहीं है।
देखो अभी जिसकी जिम्मेदारी अभी पढ़ने वालों की है, पुराने के जो कुछ स्कैनिंग्स वगैरह अवेलेबल है अभी इंटरनेट पर, उसको फॉलो करो, कंपेयर करते तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभी ये तो साइट पर उपलब्ध हो गए सब प्रवचन, तो है वहाँ पर, उसके साथ कंपेयर करके पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है, उसके साथ मिलान करते करते पढ़ो। अब मराठी में और नई मिस्टेक करने वाले है वो तो, अरे वो तो 13-16 पुस्तकें 16 जनों ने की है, अभी उसको कौन जांचने वाला है। हाँ ये है कि जहाँ कोई उनके शंका होती है, वो रेवती बहन तो फोन करती है, वो रेवती बहन कर रही, परंतु वो क्या है, अकेले थोड़ी इसके सब होते हैं, क्योंकि उन्हीं का इतना तो ये नहीं है इसे। उन्होंने हाँ अरे क्या है, कोई पैसे देता है, कोई क्या करता है, सब मिलकर ये चल रही बात। चलो अभी आगे बढ़ते, अपना अपना अभ्यास करेंगे, अभी दुनिया का जो होना है वो होने दो। नहीं वो देखो, इच्छा तो अच्छी है प्रभाव ना होवे, परंतु वो भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए
कि गलत नहीं
कि उन ये जांचे एक एक अक्षर
गलत नहीं हो
जाए, तो ही वो छपाने से फायदा है ना। नहीं ना,
उसको टाइम दी,
उसको टाइम नहीं। चलो चलो आगे, अभी हम टेबल के नीचे वो पढ़ा है हमने एक पैराग्राफ, अभी नया सूत्र पढ़ना है 37 नंबर का। सेतम बंधन परिणामम पप्प से अभ्याणम वा, अभ्याणम का दूसरा क्या है, अत्याणम पाठ। सेतम बंधन परिणामम पप्प से अभ्याणम वा मेहाणम वा संझाणम वा विज्जुणम वा उक्काणम वा कणयाणम वा दिशादाहाणम वा धूमगेदुणम वा इंदावहाणम वा से खेतम पप्प कालम पप्प उड्डम पप्प अयणम पप्प पोगलम पप्प जे चामण्ये एवं आदिया अंगमल पहुड़ीनी बंधन परिणामेन परिणमंती सो सवो सादिय विश्वसा बंधो नाम। ये सादी विश्रसा बंध क्या है उसकी बात चल रही है। देखो पहला सूत्र क्या था,
अनादि का था ना? नहीं
नहीं, देखो देखो, सादी बंध 30 नंबर के पेज से शुरू हुआ था। अनादि को तो हम धर्म अधर्म आकाश का अपने प्रदेशों के साथ बताया। अब जो सादी विश्रसा बंध है, विश्रसा है वो नेचुरल है और वो सादी है, यानी वो किसी पुरुष के प्रयत्न से नहीं हुआ है और ना ही किसी कर्म के उदय में हुआ है, यानी कर्म के उदय नहीं, जीव के भावों के निमित्त से हुआ है। अभी वो बताने के पहले वो उसके जो नियम बताए, विसदृश बनते हैं वगैरह वगैरह, उसके जो दो परंपरा है उसकी हमने चर्चा की। अब वो क्या क्या है वो यहाँ बता रहे
हैं।
हाँ, यानी जो सादी विश्रसा बंध जो है उसके उदाहरण यहाँ बता रहे, वो कैसे होते हैं तो विसदृश बनते हैं उन्होंने कह दिया, उसमें भी और जो उसके नियम बताए थे वो भी हमने पढ़ लिए। अब जो हमने अभी प्राकृत में पढ़ा है वही हिंदी में अभी पढ़ते हैं। इस प्रकार वे पुद्गल बंधन परिणाम को प्राप्त होकर, इस प्रकार यानी किस प्रकार, वो विसदृश बनते हैं वगैरह वगैरह ये जो रूल बताए, तो इस प्रकार वे पुद्गल बंधन परिणाम को प्राप्त होकर, यानी ये कोई करता नहीं उसको, ये स्वयमेव स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण वो बंध को प्राप्त होकर विविध प्रकार के अभ्र रूप से मेघ रूप से पप्पे ने प्राप्त है। मुझे लगा था वो पप्प का अर्थ क्या है, अभ्राणम अभ्र समझते है, सफेद जो होते वो अभ्र कहते हैं, अभ्रक नहीं, अभ्र नहीं, ये मेघ सफेद बादल को अभ्र कहते हैं, अभ्राच्छादित कहते हैं ना। हाँ वो अभ्रक तो कृत्रिम हुआ ना, वो तो पुरुष के अभ्र है ने वो बादल, सफेद बादल जो होते हैं ना उसको अभ्र कहते हैं। अब ये शब्द नहीं आता अभ्राच्छादित, नहीं क्या कहते हो। हाँ और शुभ्र किसको कहते हैं, नरक को कहते अभ्र रूप से मेघ रूप से, मेघ है नहीं वो तो जिसका जो बारिश वाले जो होते हैं ना पानी वाले वो मेघ, संध्या रूप से बिजली रूप से उल्का रूप से कनक रूप से दिशादाह रूप से धूम केतु रूप से इंद्रधनुष रूप से क्षेत्र के अनुसार काल के अनुसार ऋतु के अनुसार अयन के अनुसार और पुद्गल के अनुसार। अभी यहाँ डालना है, हमारे में एक वाक्य रह गया है, यहाँ लिखा है ना जो बंधन परिणाम रूप से परिणत, उसके पहले लिखना है इनको लेकर, हाँ अनुसार के बाद इनको लेकर अंगमल इत्यादि जो बंधन परिणाम रूप से परिणत, फिर से पढ़ो पुद्गल के अनुसार के बाद क्या लिखना, नहीं, ये बीच में डाला था उन्होंने बाद में डाल दिया। हाँ देखो देखो ये ऐसा लिखना है पुद्गल के ऊपर, देखो ना ऊपर के साथ कंपैरिजन करना, पग पप प्राप्त आवाज गया, हेलो 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 पप पोगलम, पोगलम पप जो है ना अयन के अनुसार, पप्प उड्डम पप्प अयनम पप्प पोगलम पप्प जय चामन्ने एवं आदि अंगमल पहुड़ीनी,
ये पप्प पोगलम पुद्गल लेना है।
हाँ पुद्गल के अनुसार देखो विविध प्रकार के अभ्र रूप से वगैरह वगैरह
पप्प से क्या लेना है,
खेतम पप्प ने उसने क्षेत्र के अनुसार किया, अनुसार कालम पप्प उड्डम पप्प काल के अनुसार, उड्डय ने ऋतु के अनुसार, अयन के अनुसार, पोगलम पप्प पुद्गल के अनुसार है ना, और यहाँ डाला है जे चामन ने एवं आदिया अनुसार इनको लेकर अंगमल इत्यादि, अंगमल पहुड़ियनी इत्यादि ने पहुड़ियनी इत्यादि बंधन परिणाम है ना परिणमंती, जो बंधन परिणाम, हाँ
जो बंधन परिणाम से
परिणत होते हैं, हाँ वो वाक्य दो बार आया है, वो दो बार की जरूरत नहीं है। फिर से आपका पूरा वाक्य पढ़ो पुद्गल के अनुसार के बाद पढ़ो, वही तो वो दो बार हुआ ना,
बंधन परिणाम से परिणत होते हैं वो निकाल
देंगे। नहीं 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 उन्हें जो बंधन परिणाम रूप से परिणत, मैं पढ़ती हूँ ऐसा आपको पढ़ना है। देखो क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार, ऋतु के अनुसार, अयन के अनुसार और पुद्गल के अनुसार, अब यहाँ डालना है आपको इनको लेकर अंगमल इत्यादि जो बंधन परिणाम रूप से परिणत होते हैं, हाँ ये इंसर्ट इत्यादि इत्यादि तक ही लेना है।
नहीं उसको पीछे कैंसिल करना पड़ेगा ना, जो
नहीं नहीं अभी हमने सुना ना, तो आप अपने अनुसार इसको ठीक कर दो। अंगमल इत्यादि जो बंधन परिणाम रूप से
लिखा ही है।
उनको सुने दे, अलग लिखा परिणत होते हैं वह सब सादी विसरसा बंध है। हाँ अभी हाँ यानी वो दो बार हुआ है ना, तो एक बार मयंक भाई आपको तो खाली एक बार ही डालना है इत्यादि, इतना डालो प्रवृत्तियां इत्यादि, प्रवृत्तियां आदि इत्यादि, ठीक है। अभी इसका अर्थ करेंगे स्पष्ट, देखो से ते अर्थात जघन्य गुण पुद्गलों के सिवा वे पुद्गल, से तम है, हाँ परंतु नीचे लिखते समय से ते जहन्न गुण पुग्गल वरिद हुआ। देखो देखो गाथा में से तम, ठीक सुनो पहले, गाथा में जो था है ना बंधन परिणामम के लिए तम लिखा, और अभी उसके नीचे जो प्राकृत स्पष्टीकरण है तो से ते पोगला यानी वो अनेक वचन के लिए ते लिखा, एक वचन के लिए सूत्र में तम लिखा था, वहाँ बात अलग थी, वहाँ बंद परिणाम के लिए तम लिखा था, बाद में ते लिखा है वो ते बराबर है। तो से ते अर्थात जघन्य गुण पुद्गलों के सिवा वे पुद्गल तम बंधन परिणाम अर्थात बंध के कारणभूत स्निग्ध वृक्ष गुण रूप परिणाम को प्राप्त होकर सब स्निग्ध वृक्ष पुद्गल बंध को प्राप्त होते हैं, यानी जघन्य को छोड़कर बाकी सब स्निग्ध वृक्ष आपस में प्राप्त होते हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि स्निग्ध पुद्गलों का स्निग्ध पुद्गलों के साथ और वृक्ष पुद्गलों का वृक्ष पुद्गलों के साथ बंधन नहीं होता। किंतु उपलिखन नवरी दो अविभाग प्रतिच्छेद अधिक स्निग्ध पुद्गलों का दो अविभाग प्रतिच्छेद हीन स्निग्ध पुद्गलों के साथ बंध होता है, यानी दस का आठवें आठ के साथ या आठ का दस के साथ, हाँ दो के डिफरेंस से होते हैं। तथा दो अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वृक्ष पुद्गलों का दो अविभाग प्रतिच्छेद हीन वृक्ष पुद्गलों के साथ बंध होता है। इस प्रकार बंध को प्राप्त होकर वे पुद्गल परिणमन करते हैं। ये लिखा ना सेतम बंध परिणामम पप्प, इतना उसका अर्थ किया। देखो देखो यहाँ लिखा ना सेतम बंधन परिणामम पप्प, यानी इस प्रकार वे पुद्गल बंधन परिणाम को प्राप्त होकर, इस प्रकार यानी किस प्रकार, इसलिए फिर दोबारा बताए। नहीं नहीं ये हमें फिर दोबारा याद कराए, हाँ क्योंकि हमारे जैसे शिष्यों को बताने के
नहीं बराबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था हम भूल गए थे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था,
यानी फिर दोबारा याद किया कि क्या रूल बताया।
नहीं नहीं दस साल पहले जो पढ़ा था,
अरे दस साल की छोटे विकल्प से भी पढ़ा था। ये दूसरी परंपरा को छोड़कर ये मूल परंपरा उन्होंने बताई है, वर्गणा खंड में मूल बात यह आई। कहाँ लिखा है?
नहीं नहीं
जघन्य को छोड़कर नहीं होता, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ नहीं होता, ये तो पहले ही बताए। परंतु नहीं होता क्या, सर्वथा नहीं होता, तो कहते दो के डिफरेंस से होता है, ये पहले नहीं होता सिद्ध किया, फिर दो के डिफरेंस हो तो हो सकता है, इतनी बात सिद्ध की, यानी ये सारे ही रूल नियम उन्होंने फिर दोहराए हैं। पहले तो अलग सूत्रों से बता ही दिए थे और इस प्रकार कहने से वो रूल फिर दोहराए यहाँ पर। अभी यथा यथा ने यहाँ भी उसके अर्थ करेंगे। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य समय में जो मेघ होते उन्हें अभ्र कहते हैं ना, उन अभ्र रूप से वे परिणत होते, वो कैसे है सादी विसर यानी जो विसरसा है ना नेचुरली होते, कोई वहां करने नहीं गया उनको। अथवा वर्षा ऋतु में जो कृष्ण वर्ण के बादल होते वे मेघ कहलाते, ये अभ्र और मेघ में अभी पढ़ा नहीं था हमने पर अभी याद था, वैसे मेघ कहलाते। सूर्योदय के समय नहीं 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 शो ये हाँ अभ्र का अर्थ होता है ये तो सफेद बादल जो होते हैं बिना बिना बारिश वाले,
वर्षा ऋतु के बिना
मेघ कहने मानते आए हैं। हाँ और कहते भी उसको मेघ, जो मेघ वो कौन सा है मेघदूत, हाँ बारिश के टाइम का ही है। यानी जो डिफरेंसेस होते हैं जैसे अभी कमल के लिए भी जो अलग अलग नाम आते हैं कुमुद पद्म
पंकज,
तो कुमुद और पद्म में क्या अर्थ है, डिफरेंस क्या है?
कलर से
कलर की बात नहीं है, कुमुदिनी किसको कहेंगे और पद्म किसको कहेंगे या अन्य कमल किसको कहेंगे? जो दिन में फूलते हैं वो पद्म वो अन्य कमल है और कुमुदिनी रात को फूलती है। ये सारे नाम विशेष को बताने वाले हैं। हाँ, अभी संध्या किसको कहना, संध्या ने संध्या काल नहीं, केवल शाम को, शाम को नहीं, संधि काल। हाँ, तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पूर्वापर दिशाओं में जो जपा कुसुम के सदृश दिखाई देती है वह संध्या कहलाती है। जो लालिमा है ना, यानी जो क्षितिजों के ऊपर जो, हाँ, जो रक्त धवल और श्याम वर्ण की होती है, ये आगे का वर्णन चल रहा है, विद्युत का, जो रक्त ने लाल सफेद और श्याम वर्ण की होती है, जिसमें अत्यधिक तेज होता है, जो कुपित हुए भुजंग के समान चंचल शरीर वाली होती है और जो मेघों में उपलब्ध होती है वह विद्युत कहलाती है, जिसको हम कहते हैं बिजली का चमकना जो है। उसके भी अलग अलग वर्ण होते हैं और वो वर्णों के क्या फल होते हैं उसके भी संस्कृत शास्त्रों में कहो या साहित्य में उसका वर्णन आता है। बचपन में बहुत पढ़ा था मैं। विद्युत, विद्युत कहलाती है, क्या लिखा है उसके
अंदर?
सूत्र में लिखा है विज्जुणम,
बिजली रूप,
बिजली रूप से लिखा है ना। हाँ, बिजली यानी विद्युत, हम कहते हैं विद्युत उपकरण, हमारे विद्युत शब्द तो आता है, विद्युल्लता शब्द भी आता है ना, विद्युत लता, विद्युल्लता। हाँ हाँ, इनके बड़ी बहन का नाम है विद्युल्लता। सबसे पहली है, अभी 94-95 की है। देखो क्या कहते हैं, वह विद्युत, ये सब आगे बढ़े ना, यानी लाल रंग की चमकती है तो क्या होता है, धवल की, तो उसके सारे उसके इफेक्ट्स फल बताए गए हैं शास्त्रों में। यहाँ नहीं लिखे, जो जलते हुए अग्निपिंड के समान अनेक आकार वाली होकर आकाश से गिरती है वह उल्का कहलाती है। जलते हुए अग्निपिंड, क्योंकि वो तो हमने देखा ना, कोई वो पृथ्वी के खंडे ही होते हैं परंतु वो जलकर छूटकर निकलते हैं, बहुत तेजी से आते हैं तो घर्षण से उसमें भी अग्नि निर्माण होती है, तो उल्का पात जिसको हम कहते हैं। है ना, तारा टूटना कहते हैं उसको। कहीं कहीं तो ऐसे बहुत सारी उल्काएं निकलती रहती है। अभी आया है ना कोई साइंस में, कुछ अमुक दिन में तो रात को
कंटिन्यूस दिखता है,
उजाला होने वाला है, यानी वो कंटिन्यूस बहुत सारी वर्षाएं गिरना है, उल्काएं गिरने वाली है। ये बहुत बड़े बड़े भी गिरते हैं ना, वो एक अपना कौन सा वो बड़ा सरोवर है ना गोल,
जो यहाँ पे महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र में है, क्या नाम है,
जलका कुंड बोलते उसको, उल्का कुंड बोलते है।
नहीं नहीं, उसमें वो गिरी थी ना, उल्का गिरकर वो तैयार हुआ है, वो गोल एकदम,
वो सरोवर बन गया,
मुझे भी उसका नाम याद नहीं। वो इसके वाशिम में जाते समय लगता है, बीच में महाराष्ट्र में है वो, हम नजदीक जाके भी देख के आए उसको।
महाराष्ट्र में,
वाशिम में नहीं, ऑन द वे है। औरंगाबाद आए थे,
लातूर के पास से,
लातूर नहीं गए उसमें, बता। हाँ, नहीं नहीं नाती पोती नहीं,
अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा था।
वो रात को वाक चलता है, वो कौन सा कचत्तर में वहाँ मंदिर
है, मुक्तागिरी, मुक्तागिरी
जाते समय
हम इसके साथ गए थे ना अपने, याद आए तो बताएंगे उसका नाम, अभी अभी नहीं स्ट्राइक हो रहा है, ये चाणी कर लेके गए थे ना हमको। देखो देखो, जिससे मनुष्य पशु और पक्षी मर जाते हैं तथा जो वृक्ष और पर्वतों के शिखरों का विदारण करती है, ऐसी अशनी को कनक कहते हैं। अच्छा, ये अशनी है, ये उल्का और अशनी में डिफरेंस किया है, पत्थर नहीं, ये जो वहां जो गिरा था वो ये होना चाहिए अशनी, ये बहुत बड़ा पत्थर है। उल्का ने वो साधारण वो दिखती है बस, गिर जाती है, मगर ये पत्थर जो अशनि गिरते हैं, अशनि एक्चुअली
नहीं पर्वत,
वो गिरकर वो पर्वतों का भी भूखा हो जाता है,
टूट जाते हैं।
विदारण करके उसको तोड़ती है,
तोड़ डालती है,
वो गिरते हैं तो सब नीचे सब टुकड़े हो जाते हैं। कनक कहते हैं उत्पात काल में अग्नि, हाँ अग्नि के बिना दावानल के समान जो दशों दिशाओं में उपलब्ध होता है उसे दिशा दाह कहते हैं।
ये लावा है ना,
दिशा दाह है ना, वो तो अग्नि के बिना लिखा है।
अग्नि के बिना
लिखा नहीं, नहीं वो तो दावानल के लाते। हेलो हेलो, दिशा दाह ने उसमें वो अग्नि के समान दाह उत्पन्न करता है, परंतु फिर भी अग्नि नहीं है।
दसो दिशा बताई था ऊपर नीचे,
और उत्पात काल मैंने वो तो मेरे ख्याल से प्रलय में होगा क्या। उत्पात काल में ही धूम यष्टि के समान जो आकाश में उपलब्ध होता है उसे धूम केतु कहते हैं। धूम केतु तो मालूम है ना, हाँ उसका जो पुंज जो उसकी जो से टेल जैसे दिखती है ना, हाँ वो दिखता रहता है हमको, उसको धूम केतु कहते हैं।
उनको नहीं मालूम पड़ा
जो पांच जो पांच वर्ण का होकर धनुषाकार रूप से या त्रुटित आकार रूप से पूर्वापर दिशाओं में उपलब्ध होता है उसे इंद्रायुध कहते। इंद्रायुध नहीं इंद्रधनुष, आयुध है ना धनुष, ये तो विशिष्ट जो वहां के जो पानी के बिंदु है उसमें सूर्य की किरणें विशिष्ट एंगल से हमको दिखती है, तो पूरा का पूरा पांच या सात कलर्स भी दिखते हैं, और हमने तो पूरा पूरा इन्हें ऊपर से दोनों क्षितिजों को टच करते हुए भी इंद्रधनुष देखे कहीं कहीं। मैंने वो भी बताया था आपको, चंद्र का खड़ा कहते हैं मराठी में उसको, पूरा चंद्र बीच में और उसको पूरा राउंड, इंद्रधनुष का पूरा राउंड उसको मैंने बताया था कि खड़ा कहते हैं मराठी में उसको। इसमें भी शब्द आया था ना राजा के लिए वो अपक, हाँ हाँ वो तो हमेशा दिखेंगे ना, हाँ और ऐसे एक से भी ज्यादा दिखते, रिवर्स में भी दिखते हैं इंद्रधनुष जो है ना,
हाँ।
एक सिंगल जैसे ताना पी निपाजा जो उसके जो ऑर्डर है,
हाँ,
तो दूसरा उसके बाजू में इंद्रधनुष होता है वो उल्टे क्रम से दिखता है, कभी देखे है ऐसे।
नहीं मैंने उल्टा क्रम से कभी नोटिस ही नहीं किया।
नहीं हमने नोटिस किया बचपन में, मैंने देखे ऐसे कभी कभी दो इंद्रधनुष दिखते है,
हाँ।
तो दूसरे इंद्रधनुष में वो क्रम उल्टा दिखता है,
दो इंद्रधनुष देखे पर ये क्रम नहीं दिखता,
वो जैसे जामुन का जामला कलर लास्ट में है ना उसमें पहला आता है, यानी उसकी मिरर इमेज दिखती है वहां पर। अभी आजकल बिल्डिंग ही दिखती है, बाकी कुछ देखने को फुर्सत ही नहीं है। देखने वालों को भी फुर्सत नहीं है ना। इन मेघ संध्या बिजली कनक, कनक का अर्थ क्या किया था
जो
वो अशनी, अशनी दिशा दाह धूम केतु और इंद्रायुध के आकार रूप से वे पुद्गल परिणत होते हैं, वो नेचुरली होते हैं ना, हाँ वो सब पुद्गल का परिणाम है। वे किस कारण से परिणत होते हैं ऐसा पूछने पर से खेतम पप्प इत्यादि सूत्र वचन कहा है, हाँ वो कहा बराबर लिखना पुराने उसमें, वो प्रिंट नहीं हुआ, ह प्रिंट नहीं हुआ, कहा है विशिष्ट आकाश देश का नाम क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र में उसके कारण भी हमने देखे, इसके कारण शीत उष्ण और वर्षा से उपलक्षित समय का नाम काल है, यानी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट काल में शिशिर वसंत निदाघ, निदाघ यानी ग्रीष्म, वर्षा, वो ऋतुओं के नाम उस दिन याद नहीं आ रहे थे ना, शरद नहीं नहीं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर ग्रीष्म, हाँ निदाघ है ना ग्रीष्म ऋतु, निदाघ
वर्षा शरद और हेमंत तो याद है,
शिशिर वसंत निदाघ वर्षा शरद और हेमंत, इनका नाम ये ऋतु इनके नाम है। वर्षा तो समझते ना अभी ग्रीष्म है ना वो तो उन गर्मी है, पहले वसंत ऋतु है ना जो वसंत पंचमी वगैरह आते हैं ना वो तो उसके समय गर्मी के दिन, वर्षा फिर शरद ऋतु आएगा फिर हेमंत ठंडी में। सूर्य का दक्षिण और उत्तर को गमन करना अयन है, जिसको संक्रांत, एक संक्रांत तो है वो तो मकर संक्रांति में प्रवेश किसमें, हाँ जुलाई अगस्त ही लेनी पड़ेगी। एक्चुअली वो तो मराठी महीने के अनुसार होते
हैं, हम लोग
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़
को ग्रीष्म कहते हैं,
पहले जो है ना चैत्र वैशाख को नहीं,
वैशाख तो
अरे
वैशाख तो मीन्स
ये ज्येष्ठ की गर्मी कहने में आती है, चैत्र वैशाख वो वसंत ऋतु है, फिर ग्रीष्म ऋषु चैत्र वैशाख, हाँ तो ज्येष्ठ है क्योंकि थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक माघशीष पौष और माघ और फाल्गुन, वो उसमें मराठी महीने के अनुसार ये होते हैं, और उसमें भी हिंदी और मराठी में डिफरेंस पड़ेगा क्योंकि हम चैत्र कहेंगे कृष्ण तो उनका, हमारे चैत्र कृष्ण में उनका वैशाख कृष्ण आ जाता है, थोड़ा डिफरेंस है। अभी आगे बढ़ते, सूर्य का ये हो गया अयन, जिनका पूर्ण और गलन स्वभाव है वे पुद्गल कहलाते हैं, अपने अपने योग्य क्षेत्र काल ऋतु अयन और पुद्गल को प्राप्त होकर वे पुद्गल उन मेघ आदि के आकार रूप से परिणत होते, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट काल में विशिष्ट उसके स्वभाव के कारण ये सब हो जाता है, अन्यथा सर्वत्र और सर्वदा उनकी उत्पत्ति का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं ये, अगर उसके द्रव्य क्षेत्र यानी उसके क्षेत्र काल इतनी मर्यादा उसके कारण वो होते ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो बिजली तो हर समय चमकनी चाहिए, इंद्रधनुष हर समय दिखना चाहिए, तो हर समय वो सभी बातें होनी चाहिए, तो कहते वो तो विशिष्ट काल में विशिष्ट क्षेत्र में इस तरह से जो पाई जाती है तो उसमें वो सब उत्पन्न होते उसके कारण, और जो ये और यानी ये सब जो बताएं वो तथा अंगमल अर्थात शरीर मल आदि पदार्थ है, ये और अन्य, अन्य कौन से अंगमल इत्यादि, ये है ना, है ना जो ये और अन्य, अन्य क्या अंगमल यानी शरीरमल इत्यादि पदार्थ है, यहाँ प्रवृत्ति शब्द से सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्र इनका उपराग तथा परिवेश और गंधर्व नगर आदि लेने चाहिए, यह सब सादी विश्रसा बंध है। इनका उपराग यानी उनके जो कुछ बाजू में जो उनका वलय होता है उसकी बात होगी, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों का उपराग का अर्थ क्या, उपराग परिवेश और गंधर्व नगर, धौव नयरादवो उसका नीचे क्या लिया है पाठ, धौव नयरादो का गंधवन्न गंधवन्न यरादवो इन्हें गंधवर्ण लिया उन्होंने आदि, और यहाँ लिखा गंधर्व नगर आदि ठीक है अब विशेषार्थ पढ़ते हैं,
ये हम लोग चेंज करें गंधर्व,
अरे नहीं, नहीं 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 कुछ चेंज मत करो, ये मूल पाठ में ही दो पाठ अलग अलग है, नीचे लिखा है नीचे देखो फुटनोट लास्ट लाइन है ना, गंध वर्ण यरादवो, गंध वर्ण इत्यादि, अरे उन्हें धौवर्ण यरादवो, वो ग तक गंध ग तो निकल ही गया, वहाँ गंध कहाँ है, वहाँ धौवर्ण यरादवो है, गंध नहीं लिखा है, वहाँ कुछ नहीं लिखना है, पांड जान लो अलग अलग, गंधर्व नगर ही लिखा है हमारे में भी, और नीचे गंधवर्ण लिखा है। आपके प्राकृत में क्या है लास्ट में, परिवेश के आगे ऊपर प्राकृत में नखत्व राग गंध है क्या, गंधव लिखा है हमारे में, धौव नय राधो ऐसा
वो
गंध गंधव ते बरोबर है, पण वो
खाली ग ऐड करना पड़ेगा ना हमारे,
पण या धौव लिखा है ना, गंधव नहीं, गंध गंध ऐड करना पड़ेगा, और उसका दूसरा पाठ नीचे बताया है गंध वर्ण यराधव, देखो कितना फर्क पड़ता है ना,
एक छोटी भूल से ये नगर बना दिया।
ठीक है, अभी जो कुछ है अब उसका विशेषार्थ ये पढ़ा ना हमने,
नहीं अभी ऊपर का सूत्र पढ़ना है
फिर से, नहीं नहीं अभी हम,
अच्छा अभी ये विशेषार्थ,
विशेषार्थ को पढ़ना है, आगम द्रव्य बंध के सिवा, आगम द्रव्य बंध में वो तो स्वाध्याय की बात देखी थी हमने, उपयोग अलग अलग और उसके जो आगम के अलग अलग भेद देखे थे वो आगम, शेष सब बंध नौ आगम द्रव्य बंध कहलाते, अन्य सभी बंध को इसमें डाला, इसके प्रयोग बंध और विश्रसा बंध ये दो भेद है, जिसमें जीव के व्यापार की अपेक्षा होती है वह प्रयोग बंध कहलाता है, यानी पुरुष के प्रयत्न ऐसा लिखा था, और जो जीव के व्यापार के बिना अपनी योग्यता अनुसार होता है वह विश्रसा बंध कहलाता है, ये जो नेचुरल जो सब बात है वो सब विश्रसा बंध है, यहाँ सादी विश्रसा बंध का विचार किया जा रहा है। अनादि में हमने देखा था वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य के सब, यह पुद्गलों की अपनी अपनी योग्यता अनुसार होता है, यो तो जितने भी कार्य होते हैं वे सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही होते हैं, किंतु बाह्य निमित्त को ध्यान में रखकर बंध के प्रयोग बंध और विश्रसा बंध ये भेद किए गए हैं। कर्म बंध प्रयोग बंध में आता है, पर समय प्रावृत में इसके विषय में लिखा है कि रागादि का निमित्त पाकर, ये रागादि का हुआ है, रागादि का निमित्त पाकर कर्म पुद्गल स्वयं कर्म रूप से परिणत होते हैं, और कर्म का निमित्त पाकर जीव रागादिक रूप से परिणमन करता है। समय प्रावृत के उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बलात् यानी बलजबली से जो जबरदस्ती से अन्य का परिणमन कराने वाला नहीं होता, किंतु एक दूसरे का निमित्त पाकर प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, शेष कथन सुगम है। यानी उन्होंने तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक उपादान वगैरह उसको बता दिया, यानी इसी के आधार से उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं, पहले हमने विश्रसा बंध देखा, विश्रसा बंध में अनादि और सादि दो भेद देखे, प्रयोग बंध को भी नहीं बताया था वो भी बताएंगे यहाँ पर, जो सो थप्पो पवो बंधो नाम सो दुविहो कम्म बंधो चेव चेद नहीं चेव नो कम्म बंधो चेव, जो प्रयोग बंध स्थगित कर आए हैं वह दो प्रकार का है। ये प्रयोग बंध और विश्रसा बंध किसके भेद थे, नो आगम द्रव्य बंध के, द्रव्य बंध के दो भेद आगम और नो आगम, नो आगम के दो भेद कौन से, प्रायोगिक विश्रसोपय और प्रयोग बंध,
प्रायोग बंध और
विश्रसोपय, विश्रसा बंध और प्रयोग बंध, विश्रसा के सादी अनादि भेद देख लिए, अभी प्रयोग बंध की बात कर रहे, देखो जो प्रयोग बंध स्थगित कर आए हैं वह दो प्रकार का है, कर्म बंध और नो कर्म बंध। इस तरह दो प्रकार का ही प्रयोग बंध होता है, क्योंकि अन्य प्रकार का प्रयोग बंध उपलब्ध नहीं होता। शंकाकार पूछते प्रयोग बंध किसे कहते हैं? समाधान, जीव के व्यापार द्वारा जो बंध समुत्पन्न होता है उसे प्रयोग बंध कहते हैं। जो सो कम्म बंधो नाम सो थप्पो, जो कर्म बंध है उसे स्थगित करते हैं। है भय के बदले है, और कर्म बंध हुआ कर्म बंध लिखो, क्योंकि आगे उसका बहुत वर्णन करना है। जो बड़े बड़े वर्णन वाले बात है वो बाद में बताते, पहले शॉर्ट को निपटा देते हैं, है ना? तो उसका बाद में वर्णन करेंगे, इसलिए पहले नो कर्म बंध की बात करेंगे। जो सो कम बंधो नाम सो थप्पो, जो कर्म बंध है उसे स्थगित करते हैं। अब दूसरा सूत्र 40 नंबर का, जो सो नो कम बंधो नाम सो पंचविहो, आलावण बंधो, अल्लीवण बंधो, संसिलेश बंधो, शरीर बंधो, शरीरी बंधो चेदी। जो नो कर्म बंध है वह पांच प्रकार का है, आलापन बंध, अल्लीवण बंध, वण बाण वाला न चाहिए, अल्लीवण, हाँ अल्लीवन लिखा है यहाँ पर, ठीक है देखते आगे क्या, फिर दोबारा उसका वर्णन आया होगा तो देखेंगे। नल का ही लिखा है, जैसे आलापन में भी नल ऑर्डिनरी लिखा है वैसा अल्लीवन में भी लिखा है। संश्लेष बंध, शरीर बंध और शरीरी बंध, इस प्रकार नोकर्म बंध पांच प्रकार का ही होता है, क्योंकि इनके सिवा अन्य बंध उपलब्ध नहीं होता। अभी उसका एक एक का स्वरूप बताएंगे। उनमें से आलापन बंध का क्या स्वरूप है ऐसा पूछने पर कहते हैं रस्सी, वरत्रा यानी कोई पर्टिकुलर रस्सी विशेष, और काष्ठ द्रव्य आदि से जो पृथकभूत द्रव्य बांधे जाते हैं वह आलापन बंध है। नहीं समझे, ये हमने कोई ऐसा वो खोखा बनाया और उसको ऊपर से रस्सी से बांध दिया, हमने ये छोटी चीज है पुड़ी बांधी और उसको हमने रस्सी से लपेट कर बांध दिया, वो क्या है? वो आलापन बंध है। लकड़ियों को भी वो इकट्ठा करके उसको हमने दौर से बांध दिया, वो सब आलापन बंध होगा। लेप विशेष से परस्पर संबंध को प्राप्त हुए द्रव्यों का जो बंध होता है वह अल्लीवन बंध, ये सादा ही है, अल्लीवन बंध कहलाता है। रस्सी, वरत्रा और काष्ठ आदि के बिना तथा अल्लीवन विशेष के बिना जो चिक्कन और अचिक्कन द्रव्यों का अथवा चिक्कन द्रव्यों का परस्पर बंध होता है वह संश्लेष बंध कहलाता है। ये फेविकॉल से वगैरह जो चिपकाया उसको संश्लेष बंध। पांच शरीरों का जो परस्पर बंध होता है वह शरीर बंध होता है। ये पांच शरीर कौन से है मनीषा बेन? औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस, कारमान, और कौन सा है क्या? वैक्रिक भी है ना, हाँ। उसको शरीर बंध कहा। तथा जीव प्रदेशों के साथ और पांच शरीरों के साथ जो बंध होता है वह शरीरी बंध कहलाता है। अब आलापन बंध के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 41 नंबर, अभी उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। जो सो आलावण बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो, से सगड़ानम वा जाणानम वा जुगाणम वा गड्डीनम, वो न के ऊपर बिंदी देना, वा गिल्लीनम वा रहाणम वा संदनानम वा सिवियाणम वा गिहाणम वा पासादानम वा गोवुराणम वा तोरणानम वा से कट्टेन वा लोहेन वा रज्जुना वा वभ्येन वा दभ्येन वा जे चामण्ये एवं आदिया अन्न दव्वाणम अन्न दव्येहि आलावियाणम बंधो होदि सो सव्वो आलावण बंधो नाम। जो आलापन बंध है उसका यह निर्देश है। ये सारे कैसे हैं, हमने देखा था प्रयोग बंध के भेद हो रहे हैं और जो नौकर्मक है तो ये उसका निर्देश है। जो शकटों का, शकट किसको कहते हैं?
गाड़ा, गाड़ू,
हाँ बैलगाड़ी, उसको शकट कहते हैं। यानों का, युगों का, गड्डियों का, गिल्लियों का, वो जहाज वगैरह को यान कहते हैं ना, अभी बताएंगे एक एक का अर्थ बताएंगे। रथों का, स्यंदनों का, शिबिकाओं का, गृहों का, प्रासादों का, गोपुरों का और तोरणों का, काष्ठ से, लोह से, रस्सी से, चमड़े की रस्सी से और दर्भ से जो बंध होता है, तथा इनसे लेकर अन्य द्रव्यों से आलापित अन्य द्रव्यों का, यानी अन्य द्रव्यों से आलापित अन्य द्रव्यों का जो बंध होता है वह सब आलापन बंध है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। यथा जिनकी धुर, गाड़ी की नाभि और महाचक्र लोह से बंधे हुए हैं, जिनके छुहे पर्यंत लोह से बंधे हुए हैं और जो नमक आदि भारी भार को ढोने में समर्थ है, वे शकट कहलाते हैं। यानी शकट यानी जिसको हम कहते हैं बैलगाड़ी पहले के जमाने में थे और लोहे से उसको बनते, लकड़ियों के जो बड़े बड़े जो उनके शेप है वो लोहे से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। अब यान नाना प्रकार के भांडों से आपूरित होकर भी समुद्र में गमन करने में समर्थ जो जहाज होते हैं वे यान कहलाते हैं। जो बहुत भारी होने से और बहुत बड़े होने से घोड़ा और खच्चर आदि के द्वारा ढोया जाता है वह युग कहलाता है। यानी बहुत बड़े बड़े जो घोड़ों से जो ढोए जाते हैं वो युग कहते हैं उसको। जिनके दो चक्के छोटे हैं और जो धान्य आदि हल्के भार के ढोने में समर्थ है वे गड्डी कहलाती है। फिरिक्की को गिल्ली कहते हैं।
फिरिक्की
पूछते हैं फिरिक्की किसे कहते हैं? समाधान जिसकी नेमी और तुम्ब की आधारभूत आठ लकड़ियां वर्तुलाकार चुंद से घटित है उसे फिरिक्की कहते हैं।
यान शब्द संस्कृत है। यान
समुद्र में यान, यान यानी वो जो जहाज होते हैं उसको यान कहते हैं। वो यान शब्द उसमें भी आया था ना, कोई किसी श्लोक में आया था शायद, लघु तत्व स्फोट या किसमें यान शब्द आया था। फिरिक्की किसे? फिरिक्की जिसकी नेमी और तुम्ब की आधारभूत
चक्र तो ना
वो आठ लकड़ियां वर्तुकाल वर्तुलाकार चुंद से घटित है उसे फिरिक्की कहते हैं।
ये जो बीच का जो गोला ये राउंड रहता है वो
किसका गोल?
वो चक्र रहता है उसपे जो बीच में जो आठ लकड़ियां लगाते हैं ना वो, हाँ हाँ। फिरिक्की कहते हैं।
फिरिक्की यानी वो फिरिक्की जिसको हम कहें चाक,
हाँ, हाँ। चाक के बीच में जो मध्य भाग में रहता है जिसपे आठ लकड़ियां,
आठ लकड़ियां वर्तुकाल। जो युद्ध में अथिरथी, अधिरथी और महारथियों के चढ़ने योग्य होते हुए रथ कहलाते। अधिरथी है क्या?
अतिरथी
हम अतिरथी कहते थे ना, क्या अधिरथी रथी महारथी क्या? अपन क्या बोलते हैं उसको मराठी में? रथी महारथी, रथी महारथी कहते हैं, अधिरथी कहते हैं। वो रथ कहलाते हैं। जो चक्रवर्ती और बलदेवों के चढ़ने योग्य होते हैं, जो सब आयुधों से परिपूर्ण होते हैं और जो पवन के समान वेग वाले होते हैं और धुर के टूट जाने पर भी जिनके चक्रों की इस प्रकार की रचना होती है, जिस गुण के कारण जिनके गमनागमन में बाधा नहीं पड़ती, वे स्यंदन कहलाते हैं। क्या बात है, पहले में भी क्या साइंस होगा ना। जो मनुष्यों द्वारा उठाकर ले जाती हुए शिबिका कहलाती, पालकी कहते हैं ना शिबिका, जिनकी भीत लकड़ियों से बनाई जाती है और जिनका छप्पर बांस और तृण से छाया जाता है, वे गृह कहलाते हैं। ईंट और पत्थरों के बने हुए पत्थर बहुल आवासों को प्रासाद कहते हैं। इन्हें आप प्रासादों में रहते हैं। कोटों के दरवाजों पर जो घर बने होते हैं, वे गोपुर कहलाते हैं। कोट समझते हैं ना,
किला,
किले के कोट, यानी वो जो दीवार होती है उसके बाउंड्री, बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर कुछ घर बनते हैं, उसको गोपुर कहते हैं। प्रत्येक पुर और प्रासादों पर वंदन माला बांधने के लिए आगे जो वृक्ष विशेष रखे जाते हैं, वे तोरण कहलाते हैं। वो तोरण लगाते हैं, उसको वंदन माला कहा। इन पूर्वोक्त शकट आदि के जो बंद होते हैं, वे आलापन बंद कहलाते हैं। यानी ये कुछ विशिष्ट रस्सी से या किले से लोहे से वो बंधे थे। शंका, इनका बंधन किस पदार्थ से होता है, क्योंकि कहीं कहीं तो प्रासादों को भी लिया है ना, गृहों को भी लिया। समाधान, काष्ठ से, लोह से, रस्सी से, वर्ध से और दर्भ से होता है। यहाँ सूत्र में आए हुए वा शब्द से, वकले से, शुंभ अर्थात तृण विशेष से और लकड़ी से होता है इत्यादि लेना चाहिए। अभी आज के जमाने में और जो प्लास्टिक की पट्टियां ये और क्या क्या है वो सब उसमें ले लेना, इसे आदि में सब कुछ आ जाएगा। काष्ठ आदि अन्य द्रव्यों से जो आलापित अर्थात परस्पर संबंध को प्राप्त हुए अन्य द्रव्यों का बंध होता है, वह सब आलापन बंध है। अभी यहाँ न बाण वाला किया है। जो सो अल्लीवण बंधो नाम तस्से इमो निर्देशो, से कड़याणम वा कुड्डाणम वा गोवर पीड़ाणम वा पागाराणम वा साड़ियाणम वा जे चामन्ने एवं आदिया। अन्न दव्वाणम अन्न दव्य ही अल्ली विदाणम बंधो होदी सो सवो अल्लीवण बंधो नाम। पहले हमने आलापन में क्या लिखा था,
जो कास्ट और उससे बनते हैं।
हाँ, उससे बनते हैं, यानी चिक्कन अचिक्कन द्रव्यों का वो बिना किसी से बांधते नहीं, अपन वो स्वयं उसका बंध होता है। जो अल्लीवण बंधे उसका यह निर्देश है। कटकों का, कुड्डों का, गोवर पीड़ों का, प्राकारों का और शाटिकाओं का तथा इनसे लेकर और जो दूसरे पदार्थ है उनका जो बंध होता है, अर्थात अन्य द्रव्यों से संबंध को प्राप्त हुए अन्य द्रव्यों का जो बंध होता है, वह सब अल्लीवण बंध है। अब 40 नंबर के पेज पर आना। बांस की कमचियों के द्वारा परस्पर बुनकर घर और अवन आदि के ढांकने के लिए जो बनाई जाती है, वे कटक अर्थात चटाई कहलाती है। वो उसके बड़े बड़े शीट्स बनाते हैं ना इसे, बांस के वो जो जिन गृह, घर और अवन की जो भीते बनाई जाती है उन्हें कुड्ड कहते हैं। हाँ ना, ना देखो, अभी हमने 42 नंबर का सूत्र पढ़ा। हाँ, ये पहला मैंने रेफरेंस के लिए पीछे का देख के मैं आगे बढ़ी थी।
ये अवन
क्या घर अवन ऐसे कुछ होगा ना, अंगन जैसे कुछ होगा, जिसके भीते होती वो घर। अवन, अवन का अर्थ अलग से नहीं बताया उन्होंने, घर अवन, अवन कुड्ड कह लेते हैं, इन्हें भीतों को कुड्ड कहते हैं, जिन्हें ग्रह ग्रह अवन की जो भीते, दूसरा शब्द कुड्डों का जो पुद्गल बंध होता है वह अल्लीवन बंध कहलाता है, क्योंकि वर्ध दर्भ लोह काष्ठ और रस्सी के बंध के बिना परस्पर मिलाने मात्र से ही यह बंध उपलब्ध होता है। यह बंध संश्लेष बंध में अंतर्भूत होता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गीली मिट्टी में चिक्कन गुण का अभाव है। गोबर से लेप कर जो पीड़ बनाए जाते हैं वे गोबर पीड़ कहलाते हैं। इनका जो बंध होता है वह अल्लीवन बंध है, क्योंकि इनके बंध में अपने से भिन्न दर्भादि बंध के कारण नहीं उपलब्ध होते। जिन ग्रह आदि की रक्षा के लिए पार्श्व में जो भीते बनाई जाती है वे प्राकार कहलाते हैं, अथवा पकी हुई ईंटों से जो वरंडा बनाए जाते हैं वे प्राकार कहलाते हैं। यहाँ पर भी ईंटों से पृथकभूत बंध के कारण नहीं पाए जाते, यानी उन्हीं की रचना, उसी द्रव्य की रचना करके जो बंध होता है उसकी बात है यहाँ पर। शंका, पहले पकी हुई ईंटों से बने प्रासाद और गोपुर आदि का आलापन बंध होता है ऐसा कहे आए हैं, अब यहाँ उनका ही अल्लीवन बंध कह रहे हैं, सो यह कथन विरोध को कैसे नहीं प्राप्त होता? समाधान, नहीं, क्योंकि पहले प्रासाद गोपुर आदि का लोहे से तथा लोह और काष्ठ की कीलों से बंध देखकर उनका आलापन बंध कहा है, परंतु उनकी भीतों का तो अल्लीवन बंध ही होता है, इसलिए उक्त कथन में कोई विरोध नहीं है। एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं इसमें से। स्त्रियों के द्वारा, वो स्त्री बराबर लिखना, देश विशेष में जो पहनी जाती है वे शाटिका कहलाती है, तथा इनका जो तंतु संतान बंध होता है वह अल्लीवन बंध है। क्या कहा? ये जो बुनते हैं ना साड़ियाँ, वो क्या धागों को बुनकर बनाते हैं,
वीविंग,
यानी उसमें कोई अन्य चीज वो चिपकाई नहीं है, उसी का आपस में एक दूसरे में गूंथ कर जो बनाई जाती है, क्योंकि इनमें तंतुओं के सिवा अलग से बंध के कारण नहीं उपलब्ध होते। अन्य एवं आदियाई स्वचन से नेत्रपट्ट और कपास के सूत से बुने हुए वस्त्रों का ग्रहण करना चाहिए, शेष कथन सुगम है। अभी इसमें अनेक बातें आप सोच सकते हैं ना, वो तो जैसे केन के जो बनाते हैं ना, इसे वो एक दूसरे में लिपट कर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें हम ले सकते हैं। यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देव।